नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। केंद्र ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स और संबंधित गुटों को गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम के तहत अवैध संगठन घोषित किया। असम सरकार ने 5 मूल निवासी मुस्लिम समुदायों गोरिया, मोरिया, देसी, सैयद और जोल्हा के सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन की प्रक्रिया को सैद्धांतिक मंजूरी दी। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा, प्रधानमंत्री स्वनिधि कार्यक्रम के अंतर्गत 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की गई। अमरीकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर केविन मैकार्थी को हटाया गया और हांगचाऊ एशियाई खेलों में भारत ने 69 पदक जीते। लवलीना बोरगोहाई और नीरज चोपड़ा आज अपना स्वर्णिम पदक सुनिश्चित करने के लिए उतरेंगे। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। केंद्र सरकार ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स और संबंधित गुटों को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत अवैध संगठन घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों पर 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया है। मंत्रालय ने बताया है कि इन गुटों की गतिविधियां देश की संप्रभुता और एकता के लिए खतरा हैं। ये गुट विध्वंसक और हिंसक गतिविधियों में शामिल रहे हैं और अपने मंसूबे पूरे करने के लिए लोगों में आतंक फैलाते रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि यदि इन संगठनों पर तत्काल अंकुश नहीं लगाया जाता तो ये अपना विस्तार करेंगे और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां जारी रखेंगे। असम सरकार ने 5 मूल निवासी मुस्लिम समुदायों गोरिया, मोरिया, देसी, सैयद और जोल्हा के सामाजिक आर्थिक आकलन की प्रक्रिया शुरू करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला किया गया। श्री शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को सामाजिक आर्थिक आकलन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आकलन से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग असम सरकार इन समुदायों के व्यापक सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान संबंधी कदम उठाएगी। राज्य मंत्रिमंडल पहले ही इन 5 समुदायों को मूल निवासी का दर्जा मंजूर कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। कल छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर खर्चा बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है।
विकसित भारत के लिए फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी भविष्य की जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए। यही वजह है हमारी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च को बढ़ाकर इस साल 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। ये पहले के मुकाबले 6 गुना ज्यादा है।
श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब देश का हर राज्य, हर जिला और हर गांव विकसित होगा।
विकसित भारत का सपना तब सिद्ध होगा जब हर प्रदेश, हर जिला, हर गांव विकसित हो। इस संकल्प को शक्ति देने के लिए आज यहां लगभग 27,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल तेलंगाना के निजामाबाद में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने मनोहराबाद सिद्धिपेट को जोड़ने वाली नई रेलवे लाइन और धर्माबाद मनोहराबाद तथा महबूब नगर कुरनूल के बीच विद्युतीकरण परियोजना राष्ट्र को समर्पित की।
मुझे धर्माबाद, मनोहराबाद और महबूब नगर कुरनूल रेलवे स्टेशन के इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इससे तेलंगाना की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी और साथ ही दोनों ट्रेनों की औसत गति भी बढ़ेगी।
रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने संबंधी प्रधानमंत्री स्वनिधि कार्यक्रम के अंतर्गत 50 लाख से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। रेहड़ी पटरी विक्रेताओं की शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत इस कार्यक्रम के जरिए लाभार्थियों को औपचारिक आर्थिक दायरे में शामिल करने और विकास के नए अवसर प्रदान करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य इस योजना को सर्वसुलभ बनाना है। मंत्रालय ने इस वर्ष 1 जुलाई से इस कार्यक्रम के अंतर्गत संशोधित लक्ष्य हासिल करने के लिए विशेष अभियान चलाया। इस अवधि में कई उच्च स्तरीय समीक्षा और निगरानी गतिविधियां आयोजित की गईं। संयुक्त प्रयासों की बदौलत 86 अरब रुपए के करीब 66 लाख ऋण 50 लाख से अधिक लाभार्थियों को वितरित किए गए। पिछले 3 महीनों में 12 लाख से अधिक नए लाभार्थियों के पंजीकरण को देखते हुए राज्यों ने इस कार्यक्रम का व्यापक स्वागत किया है। आयुष्मान भव अभियान के अंतर्गत करीब 64,000 लोगों ने अंगदान करने का संकल्प लिया है। ये अभियान इस वर्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के दौरान चलाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी अंगदान के लिए पंजीकरण कराया है। श्री मांडविया ने कहा कि आयुष्मान भव अभियान बहुत सफल रहा। पंजाब में नशे की समस्या पर जन सहयोग से काबू पाने के प्रयास तेज हो गए हैं। पठानकोट जिला पुलिस ने धार पुलिस स्टेशन को नशा मुक्त घोषित कर दिया है। इस क्षेत्र के लोगों ने नशे की समस्या पर काबू पाने के लिए पूरा समर्थन और सहयोग दिया है। एक रिपोर्ट।
पठानकोट जिले के धार पुलिस थाना क्षेत्र में कुल 45 ग्राम पंचायतें आती हैं। इन सभी ग्राम पंचायतों ने पुलिस को ये लिख कर दिया है कि उनके गांव अब नशा मुक्त हो गए हैं। इसी आधार पर धार पुलिस थाना को नशा मुक्त घोषित किया गया है और ऐसा मील पत्थर हासिल करने वाला पंजाब का ये पहला थाना बन गया है। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हर कमल प्रीत सिंह खक मौजूदा नशा मुक्ति अभियान में इसे एक बड़ी सफलता मानते हुए धार क्षेत्र के निवासियों का आभार जताते हैं, जिनके सहयोग से ये असाधारण उपलब्धि संभव हो पाई है। उनका मानना है कि मिशन भले ही कठिन था, मगर लोगों के दृढ़ इरादे से पुलिस ने अपना लक्ष्य हासिल कर ही लिया। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
अमेरिका में एक असाधारण कार्यवाही में प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केवी मैकार्थी को पद से हटा दिया गया है। अमेरिकी संसद के इतिहास में पहली बार सदन के अध्यक्ष को 210 के मुकाबले 216 मतों से हटाया गया। 208 डेमोक्रेटिक सदस्यों के साथ 8 रिपब्लिकन सदस्यों ने भी मैकार्थी को हटाने के पक्ष में वोट दिया। फ्लोरिडा के दक्षिणपंथी रिपब्लिकन प्रतिनिधि मैट गेट्स ने यह प्रस्ताव रखा था। मैकार्थी पर संघीय व्यय में कटौती के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने या राष्ट्रपति जो बाइडेन को सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। स्पीकर को हटाए जाने से सदन का विधायी कामकाज रुक गया है। यदि अमरीकी कांग्रेस वित्त पोषण की अवधि नहीं बढ़ाती है तो 17 नवंबर की समय सीमा के बाद दूसरी बार सरकारी कामकाज ठप होने की आशंका है। संभावना है कि रिपब्लिकन सांसद अगले सप्ताह नए स्पीकर के चुनाव का प्रयास करेंगे। और अब एशियाई खेलों की अन्य खबरों के साथ हैं खेल डेस्क से अंकुर सिंह। आगे बढ़ते हैं। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा के उत्तरी भागों में अगले 2 दिन तक अत्यधिक तेज वर्षा जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। अनेक पूर्वोत्तर भागों में अगले 3 दिन तक बहुत तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के कुछ और भागों से वापसी कर ली है। लद्दाख में लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद करगिल चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। 26 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 87 उम्मीदवार मैदान में हैं। 278 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। मतदान केंद्रों की निगरानी के लिए 4 चुनाव अधिकारियों और 1,000 से अधिक कर्मचारियों की तैनाती की गई है। पहली बार लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद करगिल का चुनाव M2 टाइप मशीनों के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से होगा। विश्व बैंक ने अगले वर्ष जून में समाप्त हो रहे वित्त वर्ष 2023-24 में बांग्लादेश की आर्थिक वृद्धि दर 5.6% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। अप्रैल में जारी पिछले अनुमान में आर्थिक वृद्धि दर 6.2% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया था। कल जारी नवीनतम अपडेट में विश्व बैंक ने कहा है कि बांग्लादेश ने कोविड महामारी के बाद तेज गति से आर्थिक बहाली की थी, लेकिन बढ़ती मुद्रास्फीति, वित्तीय अस्थिरता, बाहरी दबावों और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के कारण इसकी गति कुछ धीमी पड़ी है। इस बीच जुलाई से अगस्त की अवधि में बांग्लादेश को वित्तीय सहायता में भी गिरावट दर्ज की गई, इससे उसके विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ा है। निर्वाचन आयोग की पूरी टीम ने तेलंगाना में चुनाव तैयारियों की समीक्षा शुरू कर दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में आयोग ने कल शाम हैदराबाद में प्रवर्तन एजेंसियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। निर्वाचन आयोग आज सुबह तेलंगाना के सभी 33 जिलों के चुनाव अधिकारियों तथा पुलिस आयुक्तों और अधीक्षकों के साथ बैठक करेगा। हांगचाऊ एशियाई खेलों में भारत ने 69 पदक जीते हैं। लवलीना बोर्गोहाई और नीरज चोपड़ा आज अपना स्वर्णिम पदक सुनिश्चित करने के लिए उतरेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
धन्यवाद विमलेंदु। जातीय सर्वेक्षण की राजनीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी अखबारों की बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, देश में गरीबी से बड़ी जाति नहीं, इसका कल्याण हमारा लक्ष्य। देशबंधु का कहना है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बिहार जाति सर्वेक्षण का मामला, 6 अक्टूबर को होगी सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई, रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर जताई गई आपत्ति। जनसत्ता की बड़ी खबर है, वेबसाइट न्यूज क्लिक के संपादक सहित 2 गिरफ्तार, चीन के प्रचार के लिए धन लेने का मामला, 30 से ज्यादा ठिकानों पर तलाशी, गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम के तहत गिरफ्तारी, डिजिटल उपकरण और दस्तावेज जब्त। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी गतिविधि को लेकर भारत की 2 टूक पर अमर उजाला का शीर्षक है, भारत ने बढ़ाया दबाव, 41 राजनयिकों को वापस बुलाए कनाडा, 10 अक्टूबर तक वापस नहीं बुलाया तो समाप्त कर देंगे सभी राजनयिक छूट। पंजाब केसरी की टिप्पणी है, भारत की सख्ती के बाद नरम पड़े ट्रूडो, कहा हम भारत से रिश्ते सुधारेंगे। दैनिक जागरण का कहना है, त्योहारी सीजन में पूरी आर्थिकी को मिलेगा लाभ, रियल एस्टेट से लेकर ऑटो, मोबाइल फोन और अन्य होम उपकरणों में बिक्री की बढ़ोतरी की उम्मीद। हिंदुस्तान सुविधा शीर्षक से लिखता है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष पेंशन हेल्पलाइन 7 दिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काम करती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एल्डर लाइन की शुरुआत की, इसका टोल फ्री नंबर है 1-4-5-6-7। दैनिक भास्कर की खबर है, हिमालय में महिलाएं रोक रही पानी ताकि रिचार्ज हों झरने।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स और संबंधित गुटों को गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम के तहत अवैध संगठन घोषित किया। असम सरकार ने 5 स्थानीय मुस्लिम समुदायों गोरिया, मोरिया, देशी, सैयद और जोल्हा की सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन की प्रक्रिया को सैद्धांतिक मंजूरी दी। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा, प्रधानमंत्री स्वनिधि कार्यक्रम के अंतर्गत 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की गई और अमरीकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर केविन मैकार्थी को हटाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।